संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जन विचरे हमारे ध्यान में। मंगलाचरण सरस्वत ज्ञान अधिकार का आचार्य अमृतचंद ने आत्मख्याति में जो लिखा उसका पाठ अपन ने कल किया था और एक बात कही थी कि जहां जहां भी मंगलाचरण आचार्य अमृतचंद करते हैं अधिकांशतः अध्याय के आरंभ में और अंत में भी, और मध्य मंगलाचरण बहुत कम पाए जाते हैं अमृतचंद के, लेकिन हम यदि नियमसार की टीका में पद्म पल मलधारी आपको देखें तो बीच बीच में भी बहुत मंगलाचरण उनके होते हैं। जब उनका मन डोलता है तब वे किसी भी भगवान की स्तुति करने लगते हैं। अधिकांश नेमिनाथ की होती है, क्योंकि वो नेमिनाथ के किसी चैत्यालय में बैठ के वो टीका लिख रहे थे और कुछ पद्म पर मलधारी देव थे ना, इसलिए पद्म पर भगवान की भी होती है। और मैंने एक बात और कही थी कि मंगलाचरण में ज्ञान ज्योति को ही नमस्कार किया गया है। अब वो ज्ञान ज्योति सम्यक ज्ञान रूप है, केवल ज्ञान रूप है कि त्रिकाली ध्रुव आत्मा रूप है, इसका निर्णय करना बहुत कठिन है। फिर भी सभी लोगों ने अपने विवेक से जहां जैसा उनको लगा वैसा निर्णय किया है। इसमें भी मैंने कल बताया था कि उन्होंने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को नमस्कार किया है ज्ञान ज्योति के रूप में, और पूज्य गुरुदेव श्री भी यही कहते हैं, बनासी दास जी भी यही कहते हैं और भी जगह यही कहते हैं, लेकिन निर्णय करना बहुत कठिन है। मैंने भी यही लिखा है कि उनको कहा है। फिर निर्णय करना कठिन क्यों है तो उसका पद्यानुवाद एक दफे पढ़े अपन तो ख्याल में आएगा। बोलो पढ़ो अभय जी। जिसने 193 कलश का पद्यानुवाद,
जिसने करती भोपी भाव सब नष्ट कर दिए, बंध मोक्ष की रचना से जो सदा दूर है, अपार महिमा जिसकी संकोच कीर्ण जो ज्ञान कुंज वर शोका तन शोभायमान है।
अब इसमें देखिए कि जिसने सब कर्तृ और भोक्तृ भावों को नष्ट कर दिया है, इस संस्कृत में भी देख लीजिए, अखिलान भावान सम्यक प्रलयम नीत्वा, संपूर्ण विकारी भावों को, कर्ता कर्म के भावों को, कि प्रलय को प्राप्त करा दिया है भले प्रकार करके। तो ये तो बिल्कुल पर्याय की बात लगती है, जिनके तो उसमें तो है ही नहीं, करती द्रव्य स्वभाव में तो करती कर्म भाव है ही नहीं। इसलिए मैंने कहा ना बहुत बारीकी में जाएंगे तो निर्णय करना बहुत कठिन है। अच्छा तो यही है कि अपन तीनों ज्योतियों को ही नमस्कार करना माने, सम्यक ज्ञान ज्योति को भी, केवल ज्ञान ज्योति को भी, पत्रकाली ध्रुव को भी, क्योंकि इसमें तीनों के विशेषण मिल जाएंगे। और जो बंध और मोक्ष की रचना से रहित है, अब यहां पर त्रिकाली ध्रुव आ गया, बंध और मोक्ष की रचना से सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन थोड़ी रहते है, मोक्ष मार्ग थोड़ी रहते है, केवल ज्ञान भी रहित नहीं है, अब ये तो त्रिकाली ध्रुव ही है। तो इस तरह से इसमें त्रिकाली ध्रुव और सम्यक केवल ज्ञान ज्योति से प्रणमित भगवान आत्मा को नमस्कार किया गया है। देखो बनासी दास जी ने इसका जो पद्यानुवाद किया है वो तो सवैया 31 है, पढ़े 210 पेज पे।
कर्मणि को करता है, भोगनी को भोगता है, जाति प्रभुता में है तो कर्तव्य अधिक है, जाने एक इंद्रियादि पंच का कर्तव्य नाम, कर्तव्य दोष को ज्ञान कम्य तो भाव जाको लोक व्यापी लोकातीत लोक में मानित है शुद्ध बंध शुद्ध चित नामे रस हंस भयो है तो हंस परम पुनीत
जो निश्चय निर्मल
निर्मल सदा आदिमूपम सोचित्रूप बनारसी जगत मानी जयवंत।
इन दोनों छंदों में हंस परम हंस और चिद्रूप ये दो शब्द आए हैं। ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के लिए उनने प्रयोग किए हैं। है? आप कहोगे परम हंस कहाँ है कि हंस परम है ना, इसका स्थान परिवर्तन कर दो, परम को पहले ले आओ हंस को बाद में कर दो तो परम हंस हो जाएगा क्या ना। और छंद के अनुरोध से ऐसा करना पड़ता है क्या कि हंस को पहले लिख दिया और परम को बाद में डाल दिया। ऐसो परम हंस पुनीतता सहित है लिखा ना, और नीचे लिखा है सो चिद्रूप बनारसी, वो चैतन्य स्वरूप है। अब देखिए बनारसी दास जी की चतुराई पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अब उन्हें ये कहना है कर्मों का कर्ता भोक्ता जो नहीं है, अब उसको किस तरीके से कहते हैं वो, कर्मन को कर्ता और भोगनी को भोगता है। यहां तो ऐसा लगता है कि कर्ता और भोगता बता रहे हैं, लगता है कि नहीं लगता है एकदम ऊपर से, लेकिन नीचे की लाइन में कहते हैं जाकी प्रभुता में ऐसो कथन अहित है, ऐसा कथन करना उसके दरबार में उसके प्रभुता उसकी प्रभुता में अहितकारी है, माने उसके प्रभाव में ऐसा कथन करना बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसा कथन अहित, जिसकी कथनी करना भी अहित करने वाली है, उनके लिए छंद में तुकबंदी भी करनी थी क्योंकि अहित रहित महित सहित तीनों को करना था ना, और इस तरह से हैं उन्होंने अपनी बात को रखा है। जा में एक इंद्री आदि पंचदा कथन नाई, माने जीव एक इंद्री जीव दो इंद्री जीव तीन इंद्री जीव चार इंद्री जीव, ऐसा जीवों का भेद भी जिसमें कथन करना संभव नहीं है, माने जिसमें भेद करना संभव नहीं है, सदा निर्दोष और जो निर्दोष हुआ नहीं है अनादि काल से लेके अनंत काल तक सदा निर्दोष है आज त्रिकाली ध्रुव, और बंध और मोक्ष से रहित है, बंध का नाश करके मोक्ष को प्राप्त किया ऐसा नहीं है, ख्याल नहीं ना। और ऐसा शुद्ध वंश शुद्ध चेतना, चेतना के शुद्ध के वंश वाला ऐसा के रस अंश भरो और आत्मा के अतिंद्रिय रस के अंश से भरा हुआ ऐसो हंस परम परम हंस पवित्रता से सहित है। अब देखिए इसमें कहां कहीं कोई नमस्कार नहीं किया, मैं अकेला स्वरूप का ही कथन किया तो कैसा मंगलाचरण है जी है? क्यों आपने कहा था कल कि नमस्कार करते हैं नहीं करते हैं तो कम से कम जयवंत बरते हैं ऐसा ही कह देते हैं, है? इसे बोलते हैं आशीर्वादात्मक नमस्कार। अब वो भी नहीं है, दो ही गायब हो गए, इसलिए ये छंद यहां पूरा नहीं हुआ। मनहन कवच तो पूरा हो गया लेकिन बात पूरी नहीं हुई, ख्याल में ना, क्योंकि क्रिया ही नहीं आई। जिसमें ऐसा है जिसमें ऐसा है जिसमें ऐसा है जिसमें ऐसा है खत्म क्यों, और जिसमें और किसमें अवंदन लगाओ तुम, अब नीचे के दोहे से वो बात पूरी होती है, जो निश्चय निर्मल सदा व आदि मध्य अरुवंत सुचिद्रूप बनारसी जगत माही जयवंत। आगे ना कहते देखो, आदि मध्य और अंत में जो सदा निर्मल है, सदा शुद्ध है ना। कुछ लोग रखते हैं ना अपने बच्चों का नाम सदा सुखी है? सदा सुखी रहो, आशीर्वाद देते हैं ना, सदा सुखी रहो है? हमारे जयपुर में एक डॉक्टर का नाम भी है सदा सुखी। मैं तो कहता हूं, आप मुझसे कहता हूं, हमारे परमात्मा का दोस्त है, आता रहता है अपने घर पे, पैर छूता है कि बेटा आप तुमसे क्या कहें, तुम तो सदा सुखी हो ही। सदा सुखी, अरे सदा सुखी रहो वाला सदा सुखी नहीं है, सदा सुखी है। देखो जो निश्चय निर्मल सदा, सदा से आदि मध्य और अंत में जो निर्मल है, जो निर्मल हुआ नहीं है, जिसे निर्मल होना नहीं है, तो त्रिकाली ध्रुव की बात आ गई ना। यानी बनारसी दास जी ने खुल करके ये बात कही कि यहां पर त्रिकाली ध्रुव को की चर्चा हम कर रहे हैं। अच्छा, सोच चिद्रूप बनारसी, कहते हम उसका नाम रखा उन्होंने चिद्रूप। बनारसी दास कहते वो चिद्रूप है, और अब जगत मां ही जयवंत। अब ये भी नहीं कहा कि जयवंत भर तो कह राजकुमार, क्या कहा कि वो जयवंत बरतता है, वो जगत में जयवंत बरतता है। ये भी नमस्कार है, वो कहते ये स्मरण है ना उनका। स्मरण का अर्थ ये नहीं होता है कि हम नाम लेके पुकारे, स्मरण का अर्थ यही कुछ नहीं, हम जो तत्व की चर्चा कर रहे हैं ये जिनेन्द्र भगवान का स्मरण है, ये जिनेन्द्र भगवान की भक्ति है, ये जिनेन्द्र भगवान की पूजा है। ऐसा नहीं है कि अभिनंदन जी भक्ति पूजा कराते, हम भी करते हैं उनसे ज्यादा। क्यों, कितने घंटे पढ़ते हो हम इस बुढ़ापे में भी तुमसे ज्यादा पढ़ते हैं, क्या बोलते? देखो माने देव जिनेन्द्र भगवान की वाणी को अपना जीवन समर्पित कर देना, ये इससे बड़ा भगत दुनिया में कौन हो सकता है, वादा है? आप कल्पना करो, सोचो क्या है। देखो इस तरह इस मंगलाचरण का अपन ने चर्चा की, जो अधूरी कर रह गई थी वो मैंने आज उसे पूरी की है। अब जो बहुत महान सर्वाधिक महत्वपूर्ण गाथाएं शुरू होती हैं, अब उसमें अपन प्रवेश करते हैं। आज का समय लो सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार का अत्यंत मंगलमय दिवस है, उसके आरंभ का। इस प्रकार इस कलश में शुद्ध नय के विषयभूत त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को स्मरण करते हुए उसके प्रति रुचि प्रदर्शित की गई है, बहुमान प्रकट किया गया है। अब आगामी गाथा की का सूचक काव्य है, करतत्व हम बोलो भाई बोलो, एक में भी एक विशेषता है कि यहां भोक्तृभाव को उदाहरण बनाया और कर्तृभाव को सिद्धांत बनाया, जबकि दोनों एक से ही है। आत्मा ना पर का करता है ना पर का भोगता है, क्यों? लेकिन यहां कहते हैं कर्तृत्व न स्वभाव से, अस्य अस्य माने इस भगवान आत्मा का कर्तृत्व स्वभाव नहीं है। क्या मतलब है कि पर को करे पर को नहीं करे, निज को करे पर को नहीं करे, विकार को करे विकार को नहीं करे, निज को करे निर्मल परिणति को करे, क्या क्यों क्या करना है हेमचंद जी? कहते किसकी बात कर रहे हो तुम, ये तो करे वाली बात ही सही नहीं है यहां। ना ये पर को करे, ना विकार को करे, ना सम्यक दर्शन को करे, ना बंध को करे, ना मोक्ष को करे, क्या करे? अरे ये तो करता ही नहीं है, ये तो अकर्ता स्वभाव की बात चल रही है। अभी तक कौन किसको करे और किसको नहीं करे इसमें ही डोलते थे कर्ता कर्म अधिकार में, हेमचंद जी है? क्या कमलेश है कुछ मरम की बात क्या नहीं? कर्तृत्व न स्वभाव से इस अस्य आत्मा, इस आत्मा का करना ही स्वभाव नहीं है, और किसको करना किसको नहीं करना क्यों? इस आत्मा का देना ही स्वभाव नहीं है, तो किसको देना और किसको नहीं देना? आत्मा का भोगना ही स्वभाव नहीं है, अपने आनंद को तो भोगे ना अतीन्द्रिय आनंद को धर्मेंद्र, क्या बात कर रहे हो तुम? ये उस आत्मा की बात नहीं है, ये तो भोगना ही जिसका स्वभाव नहीं है, जो भोगता ही नहीं है, ऐसे आत्मा की बात हम करने वाले हैं। देखो करते तुम न स्वभावो अस्य, क्लियर है कि नहीं? मैंने जैसे कहा मैंने कोई अनर्थ तो नहीं किया, बल्कि बहुत स्पष्ट अर्थ किया ना, सरल सीधा साफ लिखा करता करता है आत्मा ने, कि कैसे नहीं है? अस्य चितो, इस चैतन्य आत्मा का कि वेद यतृत्ववत, कि जैसे जे भोगता स्वभाव नहीं है ऐसे ही इसके कर्ता स्वभाव नहीं है। अब जैसे उसको बना दिया उदाहरण और इसको बना दिया सिद्धांत, जबकि वो दोनों ही का कर्ता भोगता नहीं है, बात तो ऐसी है ना। तो वो कहते हैं कि ये आत्मा भोगता नहीं है, ये बात अपेक्षाकृत सहज लोगों को स्वीकृत है, और करता नहीं है ये सहज स्वीकृत नहीं है। देखो तीन प्रकार की चेतना होती है, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना। कर्म चेतना और कर्म फल चेतना दोनों को बोलते हैं अज्ञान चेतना। असैनी पंचेंद्री तक के सभी जीव कर्म फल चेतना की प्रधानता वाले होते हैं। क्या? बस जो भी उपलब्ध हुआ वो बस उसे भोगना, करने का भाग नहीं है, मुख्यता की बात है, समझे ना? जो भी जय पेड़ खड़ा है अब क्या करें, गर्मी है तो गर्मी को भोगना, सर्दी है तो सर्दी को भोगना, बरसात होगी तो बरसात को भोगना, तुमने दो पत्थर मारे तो पत्थरों को भोगना, उसके हाथ में उसे क्या है बोलो? माने भोगना ही भोगना है असैनी पंचेंद्री तक। फिर श्रेणी पंचेंद्री में करना और भोगना दोनों शुरू होते हैं। माताएं बहनें नाराज नहीं होना, लेकिन ये माताएं बहनें भी बहुत कुछ कर्म फल चेतना वाली होती हैं। कैसे? इन्हें खाना बनाने में जितना रस है उतना खाना खाने में नहीं है। क्या? भैया भैया पति को बच्चों को मेहमानों को 25 तरह की बनाती रहेंगी, सुबह से शाम तक खड़ती रहेंगी, हैं? प्रवचन भी छूट जाए तो छूट जाए, और फिर जब खाने का नंबर आएगा तब तक बचा खुचा जो कुछ होगा तो खा लेंगी, खाएंगी तो खाएंगी, नहीं नहीं खाएंगी तो नहीं खाएंगी। बेटा यदि इनका स्वभाव ऐसा नहीं होता तो तुम्हें अष्टमी चतुर्दशी को खाना ही नहीं मिलता। फिर तो बनाती ही नहीं, तो खाना ही नहीं है तो बनाती भी नहीं। लेकिन इनमें वो उसको समझे ना, करने करने का भाव जितना है उतना भोगने का भाव कम है। मतलब समझ गए ना कि भोगने का भाव कम है, करने का भाव बहुत ज्यादा है। ऐसे हमारे पुरुषों में भी बहुत होते हैं, उनमें भी नाराज होने की संभावना है। नाराज मत होना, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन्हें ये व्यवस्था करने में बहुत अच्छा रस है कि शिविर बहुत बढ़िया चले, सुबह से शाम तक लगे रहेंगे, एक एक व्यवस्था बिल्कुल अप टू डेट रखेंगे, और प्रवचन में का टाइम होगा तो जाके सो जाएंगे, क्योंकि बेचारों को एक ही घंटा तो मिलता है सोने का। ऐसे व्यवस्थापक नाम के प्राणी अधिकांश ऐसे होते हैं। सबकी बात नहीं करता हूं। जब मैं सबसे पहले जयपुर गया था इंदौर से परिषद में, जब जयपुर में मैंने ज्वाइन नहीं किया था, तो जिन लोगों को मेरी व्यवस्था सौंपी गई थी, तो मेरा सुबह प्रवचन होता था बड़े मंदिर में और शाम को होता था स्मारक पर। तो जो व्यवस्थापक लोग जब मेरा बड़े मंदिर में प्रवचन होता था तब स्मारक में रहते थे, जब स्मारक में होता था तो अपने घर चले जाते थे। उनका मैं दर्शन ही नहीं कर पाया 10 दिन में। ये सन 67 के परिसर की बात है। 67 समझते हो? 67 देखो, सब समझते हैं। इन्हें मुझे अंग्रेजी में समझा दिया। तो मेरे कहने का आप समझ गए ना, करने का बिल्कुल कोई कमी ना रह जाए, लेकिन उसका भोगने का भाव नहीं होता। तो करने का भाव, इसे बोलते हैं कर्तृत्व कर्म चेतना, और भोगने का भाव इसे बोलते हैं कर्म फल चेतना। अब गीता जो है वो कर्म चेतना की प्रधानता वाला ग्रंथ है। वो अपने लोगों को सिखाती है कर्तृत्व तो अधिकारास्ते मां फलेषु कदाचन। तू तो बेटा करने में ही अधिकार तेरा है, फल में नहीं। फल की परवाह मत कर, मैं तो जैसा समझूंगा दे दूंगा भोग लेना। क्या भगवान का दिया हुआ मान के चुपचाप, भगवान जो करता है तो अच्छे के लिए ही करता है। चांटा मारू जोर से तो भी समझ लेना अच्छे के लिए करता है, अच्छे के लिए चांटा मारा होगा। समझिए ना, वो कर्म चेतना की प्रधानता वाला धर्म है। वो कर्म फल चेतना से उसने हटाया ना। बहुत से लोग कहते हैं अपने कर्तव्य के प्रति सावधान रहना चाहिए। एक भाई तो कहते थे कि अब अपनी ड्यूटी का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। मैं कहा सम्यक दर्शन से भी बड़ा, हाँ सम्यक ज्ञान से भी बड़ा, सम्यक चारित्र से भी बड़ा। हम तो उसी का पालन करते हैं। क्या अपनी ड्यूटी असम यही एक कर्म चेतना वाले प्रधानता। तो यही गीता कह रही, तुम ड्यूटी करो, ड्यूटी जो तुम्हें ड्यूटी दी जाए उसे पूरी करो। अपना जैन दर्शन कहता है कि न कर्म चेतना धर्म है न कर्म फल चेतना धर्म है, तेरा स्वभाव तो मात्र जानना है कि किसका और स्व का के पर का के भेद क्यों करते हो। जानना स्वभाव है इतना पर्याप्त नहीं है। ये तो बताओ किसको कि भाई झगड़ा पड़ा होगा कि किसका, तो इसे जानना कैसे जानना कैसे जानना कैसे जानना, ये ऐसा नहीं है। बस जो इसके ज्ञान का गेय बने उसे जानना। केवल ज्ञानी को तो ये समझता ही नहीं है। तो हम तो सर्वज्ञ शक्ति से संपन्न है ना, हम तो केवल ज्ञान हो ऐसी शक्ति से संपन्न है ना, तो हमारे सामने तो ये प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि हम तो 100 पर सबको जानते हैं। क्यों हम तो किसी को नहीं जानते, ऐसी बात नहीं। स्वपर सबको जानते हैं। अब जी जो सेवक संज्ञान वाले हैं, अब इनको इनको झगड़ा है कि स्व को जाने के पर को जाने किसको जाने, ये अधिकार इसकी से भी आपको निश्चिंत कर देगा। कैसे करेगा सोचो, ये तुम्हें बताएगा कि ज्ञान की जो पर्याय पैदा होती है वो पहले से ही किसको जाने ये नक्की करके पैदा होती है, नक्की होता है पहले से। अब तेरे को क्या समस्या रही किसको जाने किसको नहीं जाने, फिर काय को भेद करता है, पर को नहीं जाने स्व को जाने, स्व को नहीं जाने पर को जाने। अरे तेरे हाथ में है क्या, वो पर्याय में पहले से ही नक्की है। और दूसरी वजह गजब की बात यह है कि वो पर्याय स्वपर प्रकाशक है, वो दोनों को ही जाने, जो तू झगड़ा खड़ा करना चाहता है वो खड़ा हो ही नहीं सकता यहां। कोई भी पर्याय एक को कभी जानती ही नहीं, चाहे निगोजिया की हो, वो स्व पर दोनों को ही जानती है। स्व में तो कोई चांस है नहीं किसको, और पर में ही है कि एक को जाने इसको नहीं जाने, सो वो नक्की है अनादिकाल से नक्की करके। हां कब नक्की हुई था ये, जब वो आयु कोई कर्म बांधते ना अगले भव की आयु, हम स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे, ये कब नक्की होगा कि हो गया है क्यों। अरे हो गया है कि नहीं है ये तो मैं नहीं बता सकता हूं कि हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन है ये बता सकता हूं, एक एक समय की एक एक पर्याय का अनादिकाल से नक्की है। और परीक्षा मुख सूत्र में ये लिखा है, ये बच्चे हमारे यहां भर्ती जो हुए हैं ना, इनको ये पहली साल ही पढ़ा दिया जाएगा, चार छह महीने के भीतर ही भीतर आगम प्रमाण के साथ, क्यों परीक्षा मुख सूत्र है ना, पहले महीने में ही पढ़ा दिया जाएगा आगम के आधार से परीक्षा मुख सूत्र में। आप समझे, अब तेरे को माथे पे क्या है, अब स्वपर का झगड़ा खत्म हो गया ना, स्वपर को जानना स्वभाव है। और प्रति समय की चाहे केवल ज्ञान रूप पर्याय हो, चाहे मति ज्ञान रूप पर्याय हो, श्रुत ज्ञान रूप पर्याय हो, वो सब स्वपर प्रकाशक ही होती है। क्यों नहीं पकड़ते हो गला, नहीं पकड़ सकते तुम, 5 साल तुमको बर्जिश कराई है, सिखाया है, क्यों नहीं पकड़ते हो। अब मैं बताता हूं, अगली दफे पकड़ लेना। अब ज्ञान और मन पर ज्ञान का क्या करोगे, वे तो अकेले पर प्रकाशक हैं, वे तो अकेले पुद्गल को जानते हैं, क्यों उसमें तुम स्व और पर दोनों को जानने वाला कैसे सिद्ध करोगे। हो सकता है ना ये प्रश्न, हमारे शास्त्रीय विद्वानों को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और यदि आपको नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, मैं पूछता हूं। वर्जिश नहीं की हमारे ऐसे पढ़ने के बाद तुमने, करते रहते तो होता प्रश्न। उत्तर क्या है बोलो कमलचंद जी, कमलेश जी, अब प्रश्न तो हो गया, उत्तर तो बताओ। अरे अभी ज्ञान मन पैदा ज्ञान कोई पर्याय है ही नहीं, वो तो एक पर्याय जो शिवसम ज्ञान की पर्याय है, उसके 4 अंश हैं, मन ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान। चारों ज्ञान जिनके एक साथ हो जाते हैं, उसे पर्याय तो एक ही होती है, वो एक समय की पर्याय में 4 प्रकार से पक्ष को जानने की योग्यता होती है। अब वो पर्याय स्वपर प्रकाशक ही होती है, हैं? अब नहीं आया हो समझ में ना, तो मेरे से कुश्ती करने मत आना, हेमचंद जी के पास चले जाना। समझ में आया क्या है वस्तु का स्वरूप, कितना हाथ में रखा, करते तुम ना स्वभाव से तितु बेदे तित्व वतन अज्ञानादैव कर्तायम तदभावाद अकार्य का अभिपर्याय की बात है कि अज्ञान के कारण ये अपने को कर्ता मानता था और अज्ञान का अभाव हो गया तो ये अकारक हो गया, माने पर्याय में भी स्वभाव से तो अकारक था ही और पर्याय में भी अकारक हो गया। देखो जैसे मुक्ति स्वभाव नहीं वैसे कर्तृ स्वभाव, बनासी दास का पढ़ो भैया। हो गई ना, स्पष्ट हो गया ना, बताने की जरूरत नहीं है ना कि जीव कर्म का कर्ता ऐसे, जीव कर्मों का कर्ता इस प्रकार है। कैसे कि जिस प्रकार स्वभाव से ही वो पर का भोगता नहीं है, मिथ्या मति से अज्ञान अवस्था में कर्ता बनता है और अज्ञान जाने पर उसका कर्तृत्व भाग भी चला जाता है और अकर्तापन आ जाता है। अब देखिए अगली गाथा, अब यहां एक झगड़ा खड़ा हो गया। कुंदकुंदाचार्य देव ने मोक्ष अधिकार खत्म कर दिया और मोक्षो निष्क्रांता कह दिया कि मोक्ष निकल गया और सर्वशुद्ध ज्ञान प्रवेश करके स्टेज पे आ गया। और जयसेनाचार्य कहते रुको रुको रुको, अभी जल्दी नहीं है, 320 गाथा तक ये मोक्ष अधिकार ही चलेगा। सुना था नहीं? अब 320 गाथा कौन से अधिकार में है? जयसेनाचार्य कहते हैं मोक्ष अधिकार में, अमयचंदाचार्य कहते हैं सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में, लेकिन दो आचार्यों में झगड़ा हो गया। अब झगड़ा भी कौन आचार्य थे? अमयचंद को तो कह ही नहीं सकते क्योंकि वे तो 300 बरस पहले हो गए। ये जो मतभेद खड़ा किया है ये तो जयसेन ने किया है ना, है कि ये नहीं इतना नहीं ये नहीं ऐसा, तो ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने अमयचंदाचार्य का उनके था नहीं था उनके हाथ में। बता रहा हूं मैं, एक तो वो कहानी आई ना अपनी भूतदी पशुदंत की कि उसमें गुरु से पूरी तरह आंख मीच के सहमत नहीं होना और विनय का कभी भी उल्लंघन नहीं करना, क्या यही बात यहां है? तो कहते मैं अमरचंद का बहुत भगत हूं और उनने जो किया है वो मैं उसे भी मानता हूं। तो एक दफे तो उनने लिख दिया मोक्षो निष्करण था, लिख दिया मोक्ष निकल गया। चलो अमरचंद ने निकाल दिया था तो मैंने भी निकाल दिया क्या? और फिर कहते हैं अत्यंत विनम्र शब्दों में मैं ये कहना चाहता हूं कि एक वर्गीकरण ये भी हो सकता है कि ये 320वीं गाथा तक चले। उनकी बात को स्वीकार करके, ये तो विनय की मर्यादा आप सुने ना, उनके प्रति श्रद्धा का भाव का प्रकट करना और फिर अपने बात मन महसूस के नहीं रह जाना, ये सिखाया है हमें अमयचंद ने और जयसेन ने। ये तो अपना महाभाग्य है कि पूज्य गुरुदेवश्री जो अपन को बताते हैं और वो बात अपन को लगभग 100% स्वीकृत है, स्वीकृत होती है, लेकिन कदाचित एक आध बात ऐसी आ जाए कि स्वीकृत ना हो तो क्यों, और हम वो अस्वीकृति व्यक्त कर दें तो क्या होगा कि अगले ही दिन हम अपने सोनगढ़ मिशन से, तत्व ज्ञान के मिशन से आपकी छुट्टी कर देंगे, क्यों यही होगा ना? लेकिन जयसेन की छुट्टी नहीं की गुरुदेव ने, उनने देखा कि वे अमृतचंद के महान भगत थे और उनका जिनने असहमति व्यक्त की उनको भी उसी श्रद्धा के साथ उनने देखा। एक तो ये बात इसमें सीखने की है। अब वे दूसरे कहते हैं कि मोक्ष अधिकार यही खत्म मान लो, और ये 12 गाथाएं हैं ना 20 तक, इनको मोक्ष अधिकार की चूल का मान लो। एक रास्ता निकाला उन्होंने, क्या ये तो मोक्ष सर्व सिद्धांत की तो कटाई गई, ऐसे चूल का मान के चालू किया और अंत में लिख दिया इतनी मोक्षो निष्क्रांता। तो अभी मोक्ष अधिकारी समाप्त हुआ ना, माने उनके चित्त में अपना मतभेद प्रकट करने के प्रति कितना भाव तीव्र था और उनकी मर्यादा का किसी तरह उल्लंघन नहीं हो जाए इसकी कितनी चिंता थी, कितनी बात थी। देखो आप निकालो पेज नंबर 214, इतना मार्मिक प्रकरण है, एक तो मैं याद रखूंगा और यदि मुझे याद नहीं रहे तो भैया समय पे याद दिला देना कि पंडित जी खत्म कर दो। है ना, मैं कोई बुरा नहीं मानूंगा। आचार्य जयसेन के चित्त में मोक्षाधिकार और सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार के विभागीकरण के संबंध में कुछ विकल्प था। एक बात और समझ लो, कुंद ने 415 गाथाएं अथवा 445 गाथाएं जितनी भी हैं, वो कितनी है बिल्कुल, वो सारी गाथाएं एक क्रम से लिखी, उनने कोई अधिकारों में विभाजन नहीं किया। यदि किया होता तो हर अधिकार के शुरू में मंगलाचरण होता, मंगलाचरण नहीं किया उन्होंने, इसलिए बस कदम पहला एक बंदे तू सब सिद्धे और अंत में छुट्टी, अंत में आगे बात कर दी बस। अब उनने नहीं किया तो अब यदि अधिकारों में बांटना है तो आगामी लोग सब स्वतंत्र हो गए, अपने अपने विवेक से बांटे। भाग्य से जो हमें उपलब्ध है वो सबसे पहले अम्बेदचंद्राचार्य ने इसे नाटक के रूप में प्रस्तुत किया और इसे अधिकारों में विभक्त किया, है ना। अब उसे बाद में जैसे नाचार्य ऐसे हुए समर्थाचार्य कि उन्होंने भी उस पर गंभीरता से विचार किया कि यदि अमृतचंद्र ने बंटवारा नहीं किया होता तो मैं ऐसा बंटवारा करता, समझिए ना। अब जो जहां मतभेद आया वहां उनका प्रस्तुतिकरण का तरीका है ना। देखो यद्यपि वे आत्मख्याति के समान 307 गाथा पर मोक्षाधिकार को समाप्त मान लेते हैं और मोक्षो निष्क्रांता ऐसा कह देते हैं, पर ये भी कह देते हैं अथ प्रवसति सर्व सिद्ध ज्ञान। अब तो कोई गुंजाइश नहीं थी फिर, क्यों इसके बाद मोक्षो निष्क्रांता लिखने की गुंजाइश नहीं थी ना। अब कौन देखता है कि कैसे किसने क्या किया है, पढ़ने जाते चल जाते गाड़ी गाड़ी चलती है, वो पढ़ना तो है स्टडी नहीं, पढ़ने में और अध्ययन करने में अंतर समझते हो, एक रीडिंग और एक स्टडी। रीडिंग है पढ़ना और स्टडी है अध्ययन करना। अखबारों का रीडिंग किया जाता है और शास्त्रों की स्टडी की जाती है। आजकल हम सुबह से उठ करके अखबारों की स्टडी करते हैं, फिर समय सार पढ़ लेते हैं। स्टडी माने बहुत बारीकी से गहराई से उसमें अध्ययन करना, है समझे ना। ऐसा रीडिंग नहीं पढ़ते नहीं चले जाना। कहते हैं मोक्षो निष्क्रांता अथ प्रवसति सर्वशुद्ध ज्ञानम भी लिख देते हैं, तथापि 320 तक की गाथाओं को वे मोक्षाधिकार की चूलिका कहते हैं, है ना। तथा 320वीं गाथा के उपरांत लिखते हैं मोक्षाधिकार संबंधिनी चूलिका समाप्ता अथवा द्वितीय व्याख्यायनेन अत्र मोक्षाधिकार समाप्ता। ये दूसरा, वो जब कोई अलग बात कहते हैं तो उसे द्वितीय व्याख्यान कहते हैं। वो अमृतचंद के कथन को प्रथम व्याख्यान के रूप में मानते हैं, पहला नंबर वो अमृतचंद को ही देते हैं। कितना बैलेंस कथन है, देखो अपने दिमाग को ऐसा बैलेंस बनाना चाहिए। अमृतचंदाचार्य देव ने पुरुषा सिद्धि उपाय में इसके लिए एक छंद लिखा है, क्या लिखा है, पेनीधार जिन वरस्त ने चक्रम, अत्यंत निषद धारम जिन वरस्त नये चक्रम, जिनेन्द्र भगवान का नये चक्र अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला है। तीक्ष्ण धार वाला माने क्या, एक आध जगह तो ऐसे लिखा है तलवार की धार के समान, तो तलवार की धार के समान तीक्ष्ण, तो हम समझते हैं ऐसा कोई काट देते होंगे, काटने की बात नहीं है, बैलेंस बनाने की बात है। देखो ये, ये, ये इस समय सारी किताब है ना, अब इस पर ये रखनी है ऐसी है। तो आसानी से रख दी ना मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, गिरी नहीं, अब इस पर ऐसे रखो बेटा, मेरे बस की तो नहीं है, रखो कोई नहीं रख सकते है ना, क्यों ये धार पतली होगी, अब और इसे और पतली धार हो तो और कठिन है ना, और तलवार की धार हो तो फिर इसको रखना बहुत कठिन है, असंभव तो नहीं है, रखा तो जा सकता है, क्योंकि इस पे जो रखा गया था ये, उसमें एक सिद्धांत काम करता था, कौन सा, कि दोनों तरफ बराबर बैलेंस रखो तो गारंटी से जे इसके सवारी गांट लेगी है ना। तो घोड़े की पीठ पे माल लादते थे ना, तो दोनों एक वो खुजरी खुर्जी बनाते थे, आधा माल इस तरफ रखते 50 किलो और 50 किलो इस तरह, तो 100 किलो माल उस पर लाद सकते हैं, लेकिन तुमने 45 किलो इस तरफ रखा और 55 किलो तो नहीं लाद सकते, फिर वो गिर जाएगा नीचे, बराबर रखना पड़ेगा ना, तो ही उसकी पीठ पे रुकेगा कि नहीं रुकेगा। अब तलवार तो दोनों तरफ यदि तुम बराबर रख दो उस बैल वजन, तो गारंटी से वहां भी रुक जाएगा। अब तुमको यदि उसका अंदाजा नहीं है तो छोड़ दो प्रयत्न। ऐसे ही जैन दर्शन में अपेक्षाओं का बैलेंस, ऐसा इसका नाम है तलवार की धार के समान। हर एक चीज में वो परका करता है कि नहीं, परका भोगता है कि नहीं, पर को जानता है, स्वपर को जानता है कि नहीं, इसमें आपको बैलेंस ऐसा रखना पड़ेगा। अब विनय और अपना विवेक, विवेक होना तो बहुत जरूरी है, लेकिन विनय की मर्यादा को उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए, और विनय के चक्कर में विवेक खोकर कुछ भी बात का समर्थन कर देना ये समझदारी का काम नहीं है। सम्यक ज्ञानी जीव को विनयवान भी होना चाहिए और विवेक बांध भी होना चाहिए। शास्त्र भाग्य से बंद हो गए तो बंद ही रहने दो।